Hare Krishna, our very good fortune today to hear His Grace Rukmini Krishna Prabhuji on the very auspicious disappearance day of His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada today on 5th of December
2009. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam tam sajivam Sadvaitam savadutam Parijana sahitam Krishna Chaitanya devam Shri Radha Krishna padan Sahagana lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine
Hare Krishna.
Hare Krishna.
तो आज बहुत ही विशेष दिन है हम सभी भक्तों के लिए. आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का तिरोभाव दिवस है. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद महाराज तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की. तो सबसे पहले हम इनका प्रणति मंत्र पढ़ेंगे जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है. नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाड्य श्री रूपानुगा भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्वांत हारिणे.
का अनुवाद इस प्रकार है,
कृष्ण संबंध विज्ञान के दाता कृष्ण के प्रिय श्री वाष्भानवी देवी राधिका के प्रिय मात्र इस भूतल पर अवतीर्ण ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरसी गोस्वामी नामक कृपा विरिधि प्रभु की वंदना करता हूँ, जो माधुर्य के द्वारा उज्ज्वलीकृत प्रेम पूर्ण श्री रूपानुगा भक्ति दानकारी तथा श्री गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप हैं। उन सरस्वती ठाकुर को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ, जो गौरवाणी के मूर्तिमान स्वरूप हैं, दीनों को तारने वाले हैं तथा श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रणित भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई कथन सहन नहीं करते। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज की एक अद्वितीय स्थिति है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में। तो आज इनका तिरुभाव दिवस है। किसी वैष्णव के तिरुभाव और आविर्भाव दिवस का बहुत महत्व होता है। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण और अलग अलग अवतार लेकर बार बार अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, उसी ढंग से अंतरंग पार्षद भी नित्य सिद्ध जीव भी समय समय पर इस मृत्यु लोक में आते हैं हम सबको अपने जीवन का लक्ष्य बताने के लिए, याद दिलाने के लिए। और जब किसी वैष्णव का तिरुभाव होता है तो हमें बहुत सुंदर अवसर मिलता है कि हम उनका गुणगान करें। उनका गुणगान करके हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम आचार्यों की सेवा करें। तो आज बहुत अच्छा अवसर है हमारे को कि हम उनका गुणगान सुने, उनका गुणगान करें और उन समझें कि जब एक वैष्णव का तिरुभाव हुआ यानी कि वो इस धाम को छोड़कर गए तो उन्होंने किस ढंग से अपने जीवन को जिया। हम इसके लिए हमारे लिए बहुत सी शिक्षाएं छोड़कर जाते हैं, किस ढंग से शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना है, किस ढंग से भगवान के दिए निर्देशों का पालन करना है, ये वैष्णवगण अपने जीवन से सिखाते हैं। और तिरुभाव के बाद वो कुछ कार्य पूर्ण छोड़ नहीं जाते, कुछ कार्य हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, कुछ आदेश हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। तो कौन से आदेश हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको उन्होंने पूर्ण नहीं किया और हमारे को अवसर दिया कि हम उनको पूर्ण कर सकें। तो तिरुभाव दिवस का बहुत महत्व है, इसलिए हम सब इसको एक उत्सव के नाम से मनाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज सिंह गुरु के नाम से जाने जाते थे और उनका जो योगदान है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में उसकी हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैष्णव का चरित्र होता है बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहन और एक सीमित मन और बुद्धि से बिल्कुल परे होता है। जैसे हम देखते हैं गौ लीला में रामानंद राय जी थे, वो देवदासियों को स्वयं श्रृंगार करवा रहे थे, उनको स्नान करवा रहे थे, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। वैसा इसलिए कर रहे थे कि उनको काम पे पूर्ण रूप से विजय प्राप्त थी। स्वरूप दामोदर जो कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु को डांटते थे, उनको करेक्ट करते थे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिल्कुल वैराग्य की मूर्ति थे, रूप और सनातन गोस्वामी जी विनम्रता की मूर्ति थे, हरिदास ठाकुर कितने सहनशील थे। इसी ढंग से श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अपने जीवन से सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य पे कितना केंद्रित होना चाहिए, कितना कर्मठ होना चाहिए। और उनके अंदर वैराग्य भी था, उनके अंदर भजन करने की तीव्रता भी थी और जिन परिस्थितियों में उनका आविर्भाव हुआ वो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। चैतन्य महाप्रभु 1534 में उनका अप्रकट्य हुआ, उसके बाद से लगभग 300 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं बिल्कुल लुप्त हो गई, मायापुर धाम बिल्कुल लुप्त हो गया। तो सभी वैष्णवगण भ्रमित थे कि क्या होने वाला है, कि महाप्रभु की जो वाणी है पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, ये कैसे सत्य साबित होगी। लेकिन तभी एक महान वैष्णव थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ गिने चुने वैष्णव में से कुछ बचे थे जो कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को यथारूप पालन करना चाहते थे, लेकिन आसपास का वातावरण बहुत ही दूषित था, तरह तरह की अपसंप्रदाय आ गई थी और गौड़िया वैष्णव एक भावुकता का धर्म बन गया था। और गौड़िया वैष्णव में सहिज्या का अर्थ है कि जो बहुत ही सस्ता राधा कृष्ण की लीलाओं को बहुत सस्ता ले लेते हैं, और पूरा गौड़िया वैष्णव धर्म एक सेक्स रिलीजन के नाम से जाने लगा था। तो कोई भी अपने आप को वैष्णव कहलाना नहीं चाहता था। एक वैष्णव एक जिसे कहते हैं एक बहुत गलत शब्द बन गया था। तो ऐसे सहिज्या अप्र संप्रदायों में मायावाद के वातावरण में भक्तिनोद ठाकुर जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान से पुकार की। ये पुकार उसी ढंग से थी जैसे कि अद्वैताचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को पुकारा था। तो भक्तिनोद ठाकुर जी ने पुकार किया, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे कैसी संतान दीजिए जो कि मेरे इस प्रचार के मिशन में मेरी सहायता करे। श्रील प्रभुपाद भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अच्छी संतान है वो दो प्रकार की होती है। या तो वो जब कोई संतान आती है और उसके पिता वैष्णव हैं तो अपने पुत्र को इस ढंग से प्रशिक्षण देंगे कि वो कृष्ण भावना भावित होकर इसी जन्म में माया से छुटकारा पा लें, और या फिर संतान को होना चाहिए भगवान विष्णु का एक अंश, भगवान विष्णु की एक किरण जो कि पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करे। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अलावा, इन दो विकल्पों के अलावा संतान उत्पत्ति का और कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो श्रील भक्तिनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि आप स्वयं एक किरण को भेजिए, एक रे ऑफ विष्णु भेजिए जिससे कि ये सारे अपधर्म समाप्त हों और चैतन्य महाप्रभु के धर्म को शिक्षाओं को पुनः स्थापित किया जाए। तो निश्चित रूप से श्रील भक्तिसान सवी ठाकुर महाराज जी का आविर्भाव हुआ 1874 में 6 फरवरी में, और उनका नाम रखा गया बिमला प्रसाद। ठीक है, और जब वो अवतरित हुए, उनका आविर्भाव हुआ, तो अवतरित होते ही मालूम चल गया था कि कोई साधारण बालक नहीं है। जो एक बच्चों की नाल होती है जैसे कि उनको माता के द्वारा भोजन प्राप्त होता है, वो नाल उनके पूरे वक्षस्थल पे जनेऊ की तरह थी, जैसे जनेऊ होता है वैसे लपेटी हुई थी। और जब उनका जन्म कुंडली बनाई गई तो उसमें सारे महापुरुषों के 32 लक्षण थे। और जब विमला प्रसाद जी अभी 5 महीने के ही थे तो जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकल रही थी तो बिल्कुल उनके घर के सामने आके रथ रुक गया और 3 दिन के लिए रथ रुका रहा। तो भागवती देवी जो विमला प्रसाद की माता जी थी वो इस बच्चे को जगन्नाथ रथ के ऊपर ले गए और क्या किया, इस विमला प्रसाद जी जो शिशु थे इन्होंने अपना हाथ लगा के जगन्नाथ जी के चरणों को छुआ और फिर जगन्नाथ जी के गले से माला उनके गले में आके गिर गई। तो भक्तिनोद ठाकुर समझ गए कि भगवान ने मेरी पुकार सुन ली है। और फिर जब अन्नप्राशन की रीत होती है जिसमें बच्चे के सामने सब कुछ रखा जाता है, अन्न भी रखा जाता है, धन भी रखा जाता है और शास्त्र भी रखे जाते हैं, तो विमला प्रसाद जी ने किसको आलिंगन किया, श्रीमद् भागवतम को, ताकि इंगित कर दिया कि आगे जाके खूब जाके धर्म का प्रचार करेंगे। तो बचपन से ही विमला प्रसाद जी एक साधारण बच्चे नहीं थे। अभी आपने सुना होगा 3 या 4 वर्ष के ही थे तो भक्तिनोद ठाकुर जी घर में आम लेके आए थे और उन्होंने गलती से आम खा लिया। तो भक्तिनोद ठाकुर जी ने उनको बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगा के फिर खाना चाहिए। तो देखिए उन्होंने तब से क्या प्रण लिया कि वो जीवन भर आम नहीं खाएंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम भी कभी भी अपने गुरु महाराज को आम दिखाते थे तो उनको याद आती, बोलते नहीं मैं एक अपराधी हूं, मैं आम नहीं खा सकता। तो इतने ज्यादा वो दृढ़ थे कि थोड़ा सा भी उनसे अपना, हालांकि बच्चे ने आम खा लिया कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो उसके लिए इतना पछतावा करते रहे, पूरा जीवन भर पछतावा करते रहे। तो ये भक्तों के लक्षण होते हैं, जीवन भर वो इस बात का पछतावा करते रहे कि एक बार उन्होंने बिना भोग लगाए आम खा लिया। हमने जीवन में देखें कितना भोग कर चुके हैं और हमें कोई पछतावा भी नहीं है। बचपन में एक गलती हुई और जीवन भर उन्होंने आम खाया नहीं, और छोटे से बालक ही थे तो उन्होंने संस्कृत में श्लोकों की रचना कर दी, 2 ऐसे श्लोकों की रचना की जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि जब महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में थे और जिस पत्थर के ऊपर वो खड़े हुए थे वो पत्थर पिघल गया था, तो उन 2 श्लोक उन्होंने वर्णन किया कि महाप्रभु का हृदय कितना कोमल है और महाप्रभु दूसरों के दुख को देखकर कितने दुखी हो जाते हैं। तो जब वो लगभग 7 वर्ष के थे तो बताया जाता है भक्तिनोद ठाकुर जी ने उनको हरिनाम करने के लिए जपमाला दी और उनको नरसिंह मंत्र में दीक्षा भी दी, और जब अपने घर में वो खुदाई कर रहे थे, भक्ति भवन बनाना चाहते थे, तो उनको कुर्मशिला, कुर्म भगवान की शिला प्राप्त हुई और उन्होंने ये शिला छोटे से बालक को दे दी, विमला प्रसाद जी को, उनकी पूजा करते थे। 7 वर्ष की आयु में ही विमला प्रसाद जी को पूरी भगवद गीता याद हो गई, सारे श्लोक याद हो गए, श्लोक भी याद नहीं हो गए वो उस पर टीका भी दे सकते थे, टीका भी दे सकते थे और साथ में कोई थोड़ी सी भी गलत बात बोलेगा, वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध बात बोलेगा गीता की टीका में, तो उसका विरोध भी कर सकते थे। एक बार वो भक्तिनाथ ठाकुर जी के साथ कहीं पे गए तो एक बाबा जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो बाबा जी ने बोला कि प्रणाम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला मैं किसी सहीजा को प्रणाम नहीं करता। सीधा बचपन से ही बड़े गंभीर, वो खेलते कूदते नहीं थे जैसे प्रहलाद महाराज, बड़े गंभीर बचपन से ही प्रचार करना, क्योंकि बचपन से उन्होंने जान लिया था कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन के को लक्ष्य को प्राप्त करना है। और भक्तिनाथ ठाकुर जी उनको सही प्रशिक्षण देते थे, जहां भी प्रचार करने जाते थे भक्तिनाथ ठाकुर जी इनको साथ लेके जाते थे और इनको साधुओं से मिलाते थे और इनको कहते थे कि वैष्णव सिद्धांत पढ़ो। अब विमला प्रसाद जी क्या करते थे कि खूब भक्तिनाथ ठाकुर जी की पुस्तकें पढ़ते थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी की पुस्तकें पढ़ते थे। इनका जो स्कूलिंग हुआ, इनका जो पाठशाला, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में इनका एडमिशन कराया गया। हालांकि भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बोला है कि जड़ वेद्या से केवल गधा ही बनता है व्यक्ति, लेकिन उन्होंने फिर भी विमला प्रसाद जी को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे चल के इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। तो स्कूल में जब जाते थे तो कुछ स्कूल की पढ़ाई नहीं करते थे, केवल शास्त्रों का अध्ययन करते थे, लेकिन फिर भी हमेशा नंबर वन आते थे। तो हम लोग इनकी नकल नहीं मार सकते हैं, लेकिन हम वैष्णवों का अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। तो इतने मेधावी छात्र थे ये, और लगभग जब 15 साल के हुए तो उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अनुवाद कर दिया, तो इनको सिद्धांत सरस्वती का टाइटल मिला। और फिर जब और बड़े हुए तो इन्होंने एक यूथ फोरम खोला और उस यूथ फोरम का नाम रखा उन्होंने चीर कुमार सभा। चीर कुमार सभा, इसमें जो एंट्री के लिए थोड़ी छोटी सी कंडीशन थी कि इसमें वही आ सकते हैं जो कि बाल ब्रह्मचारी, पूरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत लेंगे। तो बहुत से यूथ आ तो गए, लेकिन केवल जो इस व्रत का पालन केवल विमला प्रसाद जी कर पाए, केवल उन्होंने ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी के व्रत का पालन किया, लेकिन उनका इच्छा यही थी कि चीर कुमार सभा रखें। तो एक बार क्या हुआ कि जो गर्मी की छुट्टियां थी इनके स्कूल की, तो इन्होंने एक संस्कृत के आचार्य थे पृथ्वीश्वर शर्मा, उनसे ये वेद सीखा करते थे। तो जब वेद सीख रहे थे तो इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण भी सीख रहे थे, तो जो संधि होता है, जैसे दो शब्दों की संधि होते हैं, उसके ऊपर इन्होंने 3 दिन में सब कुछ सीख लिया, और जो संस्कृत कॉमेडी ग्रंथ था उसको 3 महीने में पढ़ लिया। तो इनके अध्यापक ने बताया कि इतनी जल्दी नहीं है, मुझे तो पूरा जीवन लग गया था, आराम से पढ़ा करो, समझने की बहुत गहरा ज्ञान है। और बोला कि बनारस में तो बड़े बड़े विद्वान जो पाणिनी की जो व्याकरण पढ़ते हैं पूरा जीवन पढ़ते हैं, और ऐसा वेदों में लिखा गया है कि जो पाणिनी की व्याकरण हमेशा पढ़ता है वो मृत्यु के अंत में मुक्त हो जाता है। तो जब ये बात सुनी विमला साजी ने बोला कि मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूं, तुम कोई अध्यापक गुरु नहीं हो। बोले मैं इसलिए ग्राम व्याकरण नहीं पढ़ रहा हूं कि मुझे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जीवन का लक्ष्य संस्कृत व्याकरण सीखना नहीं है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, तो मुझे आप जैसे अध्यापक नहीं चाहिए। तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया। तो इस ढंग से वो अपने अध्यापक से भी आगे होते थे। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉलेज में जब प्रवेश प्राप्त किया तो बीच में ही अध्ययन छोड़ दिया, कॉलेज की शिक्षा पूरी प्राप्त नहीं की। तो इन्होंने ये बोला कि कॉलेज शिक्षा प्राप्त करूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे फिर मुझसे आशा रखी जाएगी, अब मैंने इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली है तो मैं अब क्या करूं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, विवाह करूं, तो पूरे सामाजिक रूप से मेरे ऊपर जोर पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं शिक्षा पूरी नहीं करता। फिर से कह रहे हैं कि इसका हमें अनुकरण नहीं करना। तो उन्होंने बीच में ही शिक्षा छोड़ दी और उन्होंने बोला कि अब मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा भगवान की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु के संदेश के प्रचार में। तो बहुत ही इनका जो जीवन है इसके अंदर हमें बहुत ही अद्भुत अद्भुत घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इनका जीवन में बहुत तपस्या इन्होंने की। इन्होंने जब चतुर्मासी का व्रत रखते थे तो चतुर्मासी का पूरा व्रत ढंग से रखते थे कि 4 महीने ये केवल चावल खाते थे जो कि सूर्य की रोशनी में पकता था, बिना नमक के, थोड़ा सा उसमें घी होता था, और उसको जमीन पर फेंक देते थे, किसी प्लेट में नहीं। और उसको गोग्रास कहते हैं, गाय की तरह हाथ पीछे करके गाय की तरह उसको खाते थे, और जितना एक बार ही खा लिया उतना ही खा लिया, यानी कि उठ के फिर थोड़ा आराम किया फिर खाया, एक बार में जितना ऐसे खा सकते हैं उसी स्थिति में खा लिया, बस 4 महीने तक ऐसे इन्होंने तपस्या की। और एक बार इन्होंने यज्ञ किया षट कोटि नाम यज्ञ, यानी कि 100 करोड़ नाम हरि नाम। तो इन्होंने क्या किया, प्रतिदिन ये 300,000 नाम लेंगे और ये इन्होंने कैलकुलेट किया, इनको लगेंगे लगभग 9 साल। तो लगभग 9 साल इन्होंने प्रतिदिन 300,000 नाम लिए, यानी कि 192 माला प्रतिदिन की 9 साल 4 महीने के लिए। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि इतनी तपस्या इसलिए की क्योंकि जानते थे आगे जाकर इनको एक बहुत बड़ा विश्व में संकीर्तन आंदोलन शुरू करना है, तो उसके लिए अपने आप पूरे उन्होंने भरपूर तपस्या की। श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो जब वो हरि नाम ले रहे थे 100 करोड़ नाम, तो 1905 से इन्होंने शुरू किया ये, और 1905 से लेकर 1909 तक योग पीठ में, अगर आप मायापुर गए होंगे जहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहां पे उन्होंने घास की कुटिया बनाई 4 साल तक वहां, और फिर 1909 में वो वहां गए व्रजपट्टनम, जहां के चैतन्य चंद्रशेखर आचार्य जी का घर था, जहां की आजकल गोड़िया मठ है, जिसके सामने राधा कुंड और श्याम कुंड बनाया था, वहां बैठ के उन्होंने तपस्या की। और जब छत में से बारिश होती थी तो यानी कि उसको छत को ठीक करते थे, एक छाता लेकर वो जप करते रहते थे। तो इतनी भीषण तपस्या उन्होंने की, और बीच में इन्होंने श्री गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा भी प्राप्त की। ये दीक्षा कैसे प्राप्त की ये सब घटना आप सब जानते होंगे, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है इसमें, इसमें 1 घंटे में या 2 घंटे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम लोग बीच बीच में कुछ उनकी लीलाएं, कुछ उनकी शिक्षाएं, कुछ उनके योगदान ऐसे चर्चा करते रहेंगे। तो इनको अपने गुरुदेव श्री गौर किशोरदास बाबा जी पे पूरा विश्वास था, ऐसा विश्वास था कि बोलते थे कि मेरे गुरुदेव के चरणों की धूल का एक कण भी ऐसे फेंक दिया जाए तो पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, इतनी निष्ठा थी उनको श्री गौर किशोरदास बाबा जी के ऊपर। तो एक बार वो अपने किसी अनुयायी के साथ प्रचार पे जा रहे थे, तो गंगा के तट पर गंगा क्रॉस कर रहे थे स्टीमर में, तो उन्होंने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा कि आप तो प्रचार करते हैं और आपके जो गुरुजी हैं गौर किशोरदास बाबा जी वो तो भजनानंदी हैं और आप प्रचार करते हैं, तो समझ में नहीं आई बात। तो भक्ति श्री महाराज ने बताया कि हम दोनों का उद्देश्य एक ही है। फिर उन्होंने दिखाया कि जो जो बोट है उसका इंजन चल रहा है और काफी आवाज कर रहा है, तो बोला देखिए इस इंजन ये चल रहा है और कितनी आवाज कर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बैटरी है जो बिल्कुल शांत पड़ी है चुपचाप, लेकिन जो सारी की सारी पावर है इस इंजन को इस बैटरी से मिल रही है। तो कह रहे जो मेरे गुरुदेव हैं वो उस बैटरी के समान है, और जो सारी मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है मेरे को इस बैटरी से मेरे गुरुदेव से प्राप्त हो रही है। तो ये होना चाहिए एक शिष्य का भाव कि कैसे वो पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो 1914 में श्रीला भक्तिनाथ ठाकुर जी का तिरुभाव हो गया, 1915 में श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव हो गया। तो उसके बाद श्रीला भक्तिनाथ सभी ठाकुर महाराज बहुत निराश हो गए, क्योंकि आसपास की परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल थी, पूरे समाज में मायावाद था, ये अपसंप्रदायें थी या सहिज्या लोग थे। एक बार भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज किसी स्कूल में प्रचार करने गए, तो वहां पर एक ऐसे स्वामी थे, मायावादी स्वामी थे, जिन्होंने ये प्रचार किया हुआ था कि तुलसी के पौधा से बेहतर है बैंगन का पेड़। तो उन्होंने जान के बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताइए तुलसी की देखभाल करना ज्यादा जरूरी है या ये बैंगन के पौधे की देखभाल करना ज्यादा जरूरी है? तो जो उनको आशा थी वही उनको उत्तर मिला। सही बच्चे ने बोला, क्योंकि बैंगन से हमें फल प्राप्त होता है, भोजन मिलता है, तुलसी से हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें बैंगन के पौधे की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। तो समझिए देखिए ये प्रचार चल रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, जो तुलसी है वो साक्षात राधा रानी का विस्तार है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती थी, तो बहुत निराश हो गए थे कि कौन मेरा उत्साह बढ़ाएगा, किसको मैं दिखाऊंगा प्रचार कैसे करना है, किसको मैं जो अपने लेख लिख के दिखाऊंगा, कौन मुझे बार बार डांटेगा मेरे को सीधा करेगा, क्योंकि दोनों ही उनके जो गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी और भक्तिनाथ ठाकुर जी उनका तिरुभाव हो गया था। तो ये बिल्कुल हतोत्साहित से अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा ठीक है चुपचाप अपना भजन करता हूं, लेकिन चुपचाप अपना भजन नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर से उनको लग रहा था नहीं समाज की स्थिति बहुत खराब है, सबको चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्राप्त होना ही चाहिए, चैतन्य महाप्रभु महावदन्या है, उनकी कृपा सबको मिलनी चाहिए। तो उनके अंदर ये द्वंद चल रहा था। तो एक बार योगपीठ में वो विश्राम कर रहे थे तो उनके को बहुत सुंदर स्वप्न आया। उस स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि पूर्वी दिशा से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित आ रहे हैं। पंच तत्व आ रहे हैं कीर्तन करते हुए और उनके साथ साथ उनके पार्षद हैं और साथ में रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी सब हैं, षट गोस्वामी हैं, जगन्नाथदास बाबा जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, गोरकिशोरदास बाबा जी हैं और सबके सब उनको उत्साहित कर रहे हैं कि उठो प्रचार के लिए जाओ, हम तुम्हें पूर्ण शक्ति देंगे, तुम घबराओ मत, सारा धन सारे लोग सारे शिष्य तुम्हें प्राप्त होंगे, सारा ऐश्वर्य प्राप्त होगा, लेकिन जाओ गौरवाणी को स्थापित करो, गौर नाम गौर धाम गौर काम, यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, चैतन्य महाप्रभु का धाम, इसको स्थापित करो। तो फिर उनको उत्साह प्राप्त हुआ और फिर वो कलकत्ता में प्रचार के लिए निकले। लेकिन जब प्रचार करने के लिए निकले इनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब ये बांग्लादेश में ढक्का में प्रचार करने जाते थे तो वहां के जितने भी सहिजिया थे सब ने आपस में एक यूनियन बना लिया और जितने भी वहां के लोग थे उनको बता दिया कि भक्ति सिद्धांत महाराज के ब्रह्मचारी या सन्यासी लोग अगर तुमसे भिक्षा मांगने आए तो कोई भिक्षा मत देना। तो ब्रह्मचारी लोग भिक्षा मांगने जाते थे, लोग दरवाजा बंद कर देते थे, तो कैसे अपने जीवन पालन करें। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया घबराइए मत, गंगा का पानी पी के जी लो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो धीरे 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 लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ और फिर ढक्का में इन्होंने बहुत सुंदर केंद्र बनाया। बीच में भक्ति सिद्धांत महाराज जी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन में आए, तो ये बहुत रोचक घटना है। तो जब वो वृंदावन में आए तो कैसे आए, एक उस समय जगुआर कार थी कन्वर्टेबल जिसकी छत हट जाती थी, कार के अंदर बैठ के आए। भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने जो गौड़िया वैष्णव में योगदान दिया है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर के समय तक बहुत से सहिजिया लोग थे, यानी कि वो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की नकल मारते थे, वैसी वेशभूषा डालकर वैसा वेश डालकर समझते थे कि हम भी गोस्वामी बन गए हैं और सोचते थे जात गोसाई यानी कि जिसका गोस्वामी परिवार में जन्म हुआ है उसी को अधिकार है कि वो गुरु बन सकता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी इनका बोलबाला था। तो जब ये कार के अंदर आए तो सारे के सारे जो वहां के बाबा जी लोग थे और जात गोसाई लोग थे बड़े हैरान हो गए कौन आ रहे हैं, और इन्होंने डाले हुए थे सन्यासी के वेश। अभी तक गौड़िया वैष्णव में सन्यास वेश नहीं होता था, सबके सब बाबा जी वेश डालते थे। बाबा जी वेश आप जानते होंगे कि कोपिन और कोपिन के ऊपर छोटा सा वो बहिर्वास बस, तो वो दिखाते कि बहुत वैरागी हैं। तो लेकिन ये आए थे लाल रंग के, इन्होंने सैफ्रन कलर के सन्यास वेश डाला हुआ था और अपने साथ दो ब्रह्मचारी जो लेके आए थे उन्होंने थ्री पीस सूट डाले हुए थे। सन्यासी को अलाउड नहीं था कि कोई सिला हुआ कपड़ा डाले, लेकिन उन्होंने कुर्ता भी डाला हुआ है और अपने ब्रह्मचारियों को थ्री पीस सूट डाला हुआ है और गाड़ी में से निकले। तो सारे बाबा जी लोगों ने बोला कि तुमने तो ये वृंदावन का माहौल खराब कर दिया है, सारा आध्यात्मिक माहौल तो खराब कर दिया है। तो इन्होंने उत्तर दिया माहौल तो आप लोगों ने खराब किया हुआ है जो नकल मारे रूप गोस्वामी की, मैं आपको सिखाने आया हूं रूप गोस्वामी की शिक्षाएं क्या है। तो इस ढंग से तब से ये द्वंद चल रहा है, तब से संघर्ष चल रहा है, लेकिन बहुत साहस चाहिए था। हम कल्पना नहीं कर सकते उस समय क्या परिस्थितियां थी, कितना मुश्किल था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पुनः स्थापित करना। अगर उन्होंने योगदान नहीं किया होता आज हमें जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं प्रभुपाद जी के द्वारा यथार्थ प्राप्त नहीं होती, बहुत सस्ती बन गई थी महाप्रभु की शिक्षाएं। तो बिल्कुल आप सोचिए कितना साहस चाहिए। उसके बाद कहीं जहां भी वो वृंदावन परिक्रमा में जाते थे सब जात गोसाई मंदिरों ने क्या किया, अपने दरबार बंद कर लिए, इनको दर्शन में नहीं करने दिए। केवल एक ही मंदिर था वो था राधा रमन जी का मंदिर जहां जाकर उन्होंने दर्शन कर पाए और कई बाबा जी लोगों ने इनपे पथराव भी किया। तो इतना उन्होंने सब कुछ सहा। तो वृंदावन में एक बार क्या हुआ, राधा कुंड में एक पांडा थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं ये तो निम्न जाति के थे, मैं तो ब्रजवासी हूं। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने इस कविता में लिखा भी हुआ है कि मैं ब्रजवासियों के चरणों की धूल मांगता हूं, तो मैं ही वो ब्रजवासी हूं, तो मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की जैसे कितने गोस्वामी के चरणों की धूल दे सकता हूं। तो जब ये बात भक्ति सिद्धांत महाराज ने सुनी तो उनको बहुत क्रोध आया कि क्या तरीका है, हमारे गुरु परंपरा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने उपवास रखा और इनके शिष्यों ने भी उपवास रखना शुरू कर दिया। तो जब उस पांडव को बात मालूम चली तो इनके पास आया, इनसे क्षमा मांगी और उन्होंने फिर उपवास तोड़ा। तो बाद में इनके शिष्य ने उनसे पूछा कि ऐसे तो कोई भी कुछ बोलता रहेगा, आप कब तक ऐसे उपवास रखते रहोगे, किस चीज का मुंह बंद करोगे? तो इन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने बोला कि मैं एक आचार्य हूं, अगर मैं आचार्य की सारी सुविधाओं को लेता हूं, गाड़ी में चलता हूं, शिष्य बनाता हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आचार्य का पालन भी करूं, तो जहां तक मेरे को हो सकता है मैं अपने गुरु संप्रदाय की रक्षा करूंगा, गुरु परंपरा का रक्षा करना ही आचार्य का कर्तव्य है। तो इस ढंग से उनको जगह जगह पर विरोध सहना पड़ा। जब वे राधा कुंड में गए 1935 में, ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उपनिषदों पर उपदेश देना शुरू किया। तो शुरू शुरू में मालूम चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए हैं और ये उपदेश कर रहे हैं, तो बड़े बाबा जी लोग इकट्ठे हो गए कि कुछ रसिक कथा सुनने को मिलेगी। नहीं, रसिक कथा के स्थान पर मिल रहा था उनको उपनिषद पर प्रवचन। तो धीरे धीरे सारे बाबा जी लोग हट गए, क्या है बेकार बात कर रहे, सूखी सूखी बातें बता रहे हैं। उन लोगों को आदत थी राधा कृष्ण की गोहितम तत्व की चर्चा करने की, तो सब चले गए। तो जब प्रभुपाद जी ने सुना तो बोला कि ये राधा कुंड नहीं है, ये क्या है, नरक कुंड है, जहां लोगों की ये मानसिकता है। और फिर उन्होंने बोला कि राधा कृष्ण की गोहितम लीला सुनने के लिए पहले अधिकार होना चाहिए, हरि भजन में सबसे पहले उपनिषदों को सुनना चाहिए, जैसे हम पहले संबंध ज्ञान को समझ सकें। बिना अधिकार के अगर राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो राधा कृष्ण को हम डिस्टर्ब करेंगे, तो डिस्टर्ब नहीं करना है, पहले अधिकार प्राप्त करें। तो इसलिए राघुनागा भक्ति में भी वो बोलते थे कि राघुनागा भक्ति करने से पहले हमें रूपानुगा होना पड़ेगा। रूपानुगा मतलब का अर्थ है कि रूप गोस्वामी जी ने जो स्तर बताए हैं राघुनागा भक्ति तक पहुंचने के लिए, पहले उन स्तरों का पालन करना पड़ेगा, पहले अनर्थ निवृत्ति करनी पड़ेगी। मैं बहुत सुंदर उदाहरण दिया, अगर बिना अधिकार के अगर कोई अपरिपक्व अवस्था में राधा कृष्ण की गोहितम लीलाओं की चर्चा करता है तो वैसे ही हुआ जैसे एक 5 साल के एक छोटे से बच्चे को आप मैथुन की अलग अलग बातें सुना रहे, तो उस बेचारे को क्या समझ आएगा। स्वयं है स्वरती अदा, जैसे ही समय आएगा उसके अंदर काम वासनाएं जागृत होंगी, उस अपने आप सबको सीख जाएगा। लेकिन उसको कम आयु में अपरिपक्व अवस्था में ऐसा ज्ञान देंगे तो उसके चेतना का आप समझ सकते हैं क्या हाल हो सकता है। इसी ढंग से अपरिपक्व अवस्था में हमें राधा कृष्ण गोहितम लीलाओं में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीला भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर महाराज ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे पास राधा कृष्ण का प्रेम है, उन्होंने राधा शायद मंजरी शब्द कभी बोला भी नहीं, ये सब बातें सस्ती नहीं है। और बोला अगर कोई व्यक्ति जिसके हृदय में अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है और वो इस तरह की राघुनाथ भक्ति करने का प्रयास करता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में अगासुर और बकासुर का वध करते हैं, तो ऐसे साधक को भी कभी वध हो जाता है, यानी उसकी भक्ति का भी नाश हो जाता है। विष्णु रूप में कृष्ण उसकी भक्ति का नाश कर देते हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, अधिकार नहीं है, और बिना अधिकार के वो इन लीलाओं में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। एक उदाहरण ऐसे दिया कि अगर कोई लोग तंबाकू पीते हैं पाइप के द्वारा, तो ऐसे लोग जो बिना योग्यता के इस उच्च स्तर की भक्ति को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिए किसी के हाथ में पाइप है तो मुंह में तो पाइप है लेकिन अग्नि जो है वो नदी के दूसरे किनारे पे है, तो कैसे अग्नि लगेगी उसको। तो बीच में आपकी अयोग्यता की नदी है, इतनी बड़ी नदी है, पहले इसको पार करो फिर आप इस लीलाओं में प्रवेश करो। तो बहुत उन्होंने इसका खंडन किया, क्योंकि उस समय बहुत कॉमन था ना, सिद्ध प्रणाली ऐसे बांट दी जाती थी। और बोलते कि उन्होंने कहा कि जो रागनों का भक्ति है ये इन सहजियों का अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है, इनको यहां से छीन कर हमें देनी है, लेकिन इसके लिए पहले योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने बोला साधकों को क्या करना है, अनर्थ निवृत्ति के लिए अपनी सेवा वृत्ति को जागृत करना पड़ेगा कि हम सेवा वृत्ति जागृत करें, निष्काम भाव से सेवा करें जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो, और फिर सब हृदय शुद्ध हृदय में हम माया हम कृपा को अवतरित कर सकते हैं, कृपा को पुकार सकते हैं, और जब कृपा अवतरित होगी फिर अपने आप प्रेम अवतरित होगा, जबरदस्ती हम नकल नहीं मार सकते। तो निष्काम सेवा करना हमने सीखना होगा, उस निष्काम सेवा के भाव से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो मुख्य बात है इस सेवा की वृत्ति को जागृत करना। तो इस ढंग से उन्होंने खंडन किया, लेकिन वो कहते थे कि उन्होंने राघुनाथ का भक्ति के स्थान पे पहले बोला कि आपको पूजल रागपत, यानी कि जो भगवान के रागात्मिका भक्त हैं उनको बहुत आदर देना चाहिए, उनका स्थान नहीं ले लेना चाहिए कि हम स्थान ले लिया उनका। राधा कृष्ण के अंतरंग पार्षदों का हम स्थान नहीं ले सकते, उनकी हम बहुत पूजा कर सकते हैं और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे हम चल सकते हैं। शिला भक्ति सिंह सोई ठाकुर महाराज ने कभी भी यह इच्छा प्रकट नहीं की कि वो राधा कुंड में रहे, वो अपने आप को इस योग्य नहीं मानते थे। बोले राधा कुंड पे मेरे गुरुदेव रहते हैं, गौर किशोरदास बाबा जी रहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी रहते हैं, अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वहां सेवा करके गोवर्धन में निवास करूंगा, राधा कुंड में निवास नहीं करूंगा। और जब राधा कुंड जाते भी थे तो बहुत कम वो राधा कुंड में स्नान करते थे, वो परिक्रमा करते थे और दंडवत करते थे और आचमन करके आ जाते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि राधा कुंड में कभी अपने पांव ना डाले। ऐसे एक बार 1935 में कार्तिक में परिक्रमा करने के बाद बहुलाष्टमी के दिन उन्होंने अपने शिष्यों के साथ स्नान किया था, अन्यथा वो उसमें स्नान नहीं करते थे। तो ये आचार्यगण हैं जो अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं। वो नित्य सिद्ध जीव हैं लेकिन बिल्कुल एक साधक की तरह रहते थे। रोज सुबह 2 बजे उठ जाते थे, जप माला में जप करते थे, तिलक लगाते थे, गायत्री करते थे, बिल्कुल साधकों की तरह रहते थे वो नित्य सिद्ध। तो बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं, जैसे पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा कर लिया तो ब्रजमंडल परिक्रमा करने के बाद भक्ति सिंह महाराज ने अपने सर पे हाथ उठाया, बोला मां कितना दुर्भाग्यशाली हो, पूरे ब्रज में मुझे एक भी वैष्णव नहीं मिला। सारे शिष्य परेशान, हमने इतने ब्रजवासियों को देखा, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतना वो मां नाम जप ले रहे हैं, बोले एक भी वैष्णव नहीं मिला। बोले सबके सब कनिष्ठ अधिकारी। तो उसमें से क्या हुआ, उनके एक शिष्य थे श्रीधर महाराज, वो थोड़ी देर रुक गए वहां पे। तो वहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा थे जिनका नाम था राधा कृष्ण दास बाबा जी। तो वो ऐसे बाबा जी थे जिनके आसपास दूर दूर से लोग आते थे वैष्णव सिद्धांत की चर्चा करने में, उनसे दर्शन सीखते थे। और बताया जाता है कि वो जब हरि नाम लेते थे आंखों से इतने आंसू निकलते थे कि पूरे उनके कपड़े गीले हो जाते थे, और उनके शिष्य साफ कर रहे हैं, आंसू निकली जा रहे हैं, हरि नाम ले रहे आंसू निकली जा रहे हैं। और बिल्कुल वो सदाचार का पालन करते थे, लेकिन जो सदाचार है वो हरिभक्ति विलास पर आधारित नहीं था, स्मृति शास्त्रों पर आधारित था। तो इतने उच्च वैष्णव दिखने पर भी उनकी एक राय क्या थी कि जिन लोगों का जन्म निम्न जाति में हुआ है उनका उपवृत्ति संस्कार नहीं होना चाहिए, उनको ब्राह्मण बनने का अधिकार नहीं है। ये देखिए, मतलब कि आप उस समय की परिस्थितियों को सोचिए कितना ज्यादा जातिवाद फैला हुआ था। दिखने में इतने उच्च कोटि के वो बाबा जी थे लेकिन फिर भी वो कहते थे कि जो निम्न जाति में पैदा हुए लोग हैं वो ब्राह्मण नहीं बन सकते। उनका कहना था कोई निम्न जाति में पैदा हुआ जो गोसाई परिवार में आया है निश्चित रूप से उसने अच्छे कर्म किए हैं तभी गोसाई परिवार में आया, तो उसी को अधिकार है ब्राह्मण बनने का, निम्न जाति वाला व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बन जाएगा। तो इसका विरोध उन्होंने किया भक्ति सिंह महाराज जी ने। तो ऐसी परिस्थितियां थी। तो जब उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी से पूछा था, क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी पहले ब्रजवास करके फिर मायापुर में आए थे, तो उन्होंने बोला था कि आप ब्रजवासी बाबा जी विषय के बाबा जी के लोगों के बारे में क्या कहेंगे। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने एक ही शब्द बोला था, सब बेकार है, ऑल बोगस। तो हमें ऐसा नहीं है कि जो ब्रजवासी हैं उनके में अवहेलना करनी है, लेकिन हमें अपने गुरु परंपरा के द्वारा जो दर्शन प्राप्त है, जो सिद्धांत प्राप्त है, ये उच्चतम सिद्धांत है, इसमें हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति का आधार है श्रद्धा। यस्य देवे पराभक्ति तथा यथा देव तथा करो तस्य कथिता यहां तक प्रकाश अंत महात्मना। जब तक अटूट श्रद्धा नहीं होगी गुरु परंपरा में, हमें ये शास्त्रों का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। तो बहुत सा प्रोपेगेंडा होता है लेकिन श्रद्धा हमारी अटूट होनी चाहिए। शिला भक्ति सिंह सोई ठाकुर महाराज का ब्रजवासियों के लिए इतना सम्मान था कि छोटे से छोटे जीवों को भी जो कि मनुष्य योनि में नहीं थे उनको ब्रजवासी मानते थे। एक बार मथुरा में वो प्रवचन कर रहे थे तो उनके आसपास कुछ मक्खियां मंडरा रही थी, तो उनके शिष्य उनको हटा रहे थे, बोला नहीं नहीं इनको तंग मत करो ये ब्रजवासी हैं। तो इतना वो आदर करते थे। तो भक्ति सिंह सोई ठाकुर महाराज का जो स्मरण शक्ति थी बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी थी, एक बार किसी चीज को देख लेते थे पढ़ लेते बिल्कुल याद हो जाता था। उनके हजारों शिष्य थे, लगभग 60,000 शिष्य थे, उनको सबके नाम याद थे। और कहीं भी वो जाते थे दोबारा उस स्थान पे जाते थे तो नाम लेके उस व्यक्ति को पुकारते थे, उस व्यक्ति का क्या हुआ उसको बुलाओ, चाहे वो दीक्षित है या नहीं है, और अपने शरीर छोड़ने से पहले जो 50-60 वर्ष पूर्व उन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, एक एक शब्द वैसे का वैसा उनको याद रहता था। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग कितना संघर्ष करते हैं कि एक श्लोक याद करने के लिए कि हमें भी ऐसी स्मरण शक्ति प्राप्त हो। लेकिन जो इनके मठ में ब्रह्मचारी रहते थे और जो ग्रस्त भी काफी इनके शिष्य थे, गुरु और शिष्य के इनकी कुछ घटनाएं हैं जो कि बड़े इनके मधुर संबंध थे। इनके शिष्यों में एक जो उक्ति थी बड़ी प्रसिद्ध थी कि प्रभुपादेर गाल प्रभुपादेर दाल, दोनों ही बड़ी मधुर है। प्रभुपादेर दाल मतलब जो इनके महाप्रसाद दाल के रूप में प्राप्त हो रहा है वो, और प्रभुपादेर गाल जो इनकी डांट है, बोले बड़ी मधुर है। तो ये बहुत डांटते थे अपने शिष्यों को, और अपने शिष्य जो कोई गलती करते थे उनको ठीक करने के इनके तरह तरह के उपाय होते थे। एक बार जब ये प्रवचन दे रहे थे तो जैसा कि होता है प्रवचन में कुछ लोग सो जाते हैं, तो एक ब्रह्मचारी को देखा वो सो रहा था, तो उनको बोला इसको उठा के राधा कुंड में डाल दो। बोला क्यों? बोले मैंने तुम्हें मालूम नहीं यहाँ कौन कौन बैठा है, यहाँ मेरे गुरुदेव आए हुए हैं गोरकिशोरदास बाबा जी, यहाँ भक्तिनो ठाकुर जी बैठे हैं और तुम सो रहे हो, तुम उनका अपमान कर रहे हो, तुम्हें सोते हुए देख के ये दोनों चले जाएंगे, कैसे सो सकते हो? तो जब हमें क्लास में नींद, हमें याद रखना चाहिए पूरी गुरु परंपरा यहाँ बैठी है, भागवतम क्लास में सोना पूरी गुरु परंपरा के प्रति अपमान है, किसी को सोना ही नहीं देते थे। तो हमें कभी नींद आती है तो हम खड़े हो जाएं, कुछ भी करें, राधा कुंड में हम डुबकी तो नहीं मार सकते, लेकिन खड़े होकर सोना नहीं चाहिए, इतने हो सकते। कीर्तन हो रहा था तो एक ब्रह्मचारी जोर जोर से घंटा बजा रहे थे, तो उन्होंने बोला क्या बोल रहे, घंटा बाजे शंख बाजे घंटा बाजे, आगे क्या है, माधुर 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 बाजे, माधुर बजाओ शोर ना मचाओ। तो कीर्तन करें तो याद रखें कीर्तन मधुर होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो एक बार एक महाप्रसाद जैसे हुआ और प्रसाद बंट रहा था, तभी एक ग्रस्त वहां पे आ गए पूरे परिवार के साथ, बड़े परिवार के साथ आ गए, प्रसाद वितरण के समय अचानक वो आ गए। तो ब्रह्मचारी बोला आ गए प्रसाद वितरण के समय, खाने आ गए प्रसाद, ना कोई दान देते हो ना कोई सेवा करते, खाने आ जाते हो, पूरे परिवार को लेके आ गए। तो ब्रह्मचारी उनको ऐसे डांट रहा था, तो भक्तिशान महाराज ने सुन लिया, बोले इनको डांटो मत ना, बोले ये अंतर्यामी प्रेरित लोग हैं, परमात्मा इनको प्रेरित करता है, प्रसाद का समय हो गया जाओ, किसी ने बताया नहीं इनको प्रसाद का समय, तो अंतर्यामी प्रेरित है, परमात्मा ने इनको भेजा है, तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनको प्रसाद खिलाओ, ये उन लोगों से बेहतर है जो दान देते हैं लेकिन इतने दुर्भाग्यशाली कि प्रसाद खाने नहीं आ सकते, जो प्रसाद खाने आए इनको खिलाओ। लेकिन अगर कोई ऐसे रोज ही आता था तो फिर बोल देते थे ये खाने की जगह नहीं है, डांटते थे। ऐसे बहुत लोग होते थे केवल प्रसाद के समय आते थे, रोज ही आ रहे हैं तो बड़े अंतर्यामी प्रेरित नहीं हो तुम अपने उदर के द्वारा प्रेरित हो, तो फिर पहले सेवा करो तब तुम्हें प्रसाद खाने का हक है। तो जैसे कोई इनके सामने आता था किसी भक्त के लिए बताने के लिए, एक बार एक ग्रस्त लोग आए डक्का से, बोले जो त्रिभुवन ब्रह्मचारी है मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करता, तो बोले ठीक है वो कर सकता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो बेचारे सोच रहे थे वो बोलेंगे, जब त्रिभुवन ब्रह्मचारी ने सुना कि गुरु महाराज ने यही उत्तर दिया है तो उसको इतनी शर्म आई, उसका मॉर्निंग प्रोग्राम अपने आप ठीक हो गया। तो उनके अपने ठीक करने के अलग अलग तरीके होते थे, बहुत सी घटनाएं हैं। जैसे एक बार एक शिष्य आया, उनका सन्यासी शिष्य था, वो बिना बताए गंगा यात्रा पे चला गया जिसमें 5-6 महीने लगने थे, बिना बताए बिना परमिशन लिए। तो पहले बद्रिका आश्रम में गया, बद्रिका आश्रम से नीचे कुरुक्षेत्र में वापस आया, तो कुरुक्षेत्र में इनका मठ है वहां जाने लगा, तो वहां जाने लगा तो वहां जो मठ के मठाधीश थे उन्होंने बोला एक चिट्ठी आई है वहां से कलकत्ता से, आपको यहां रहना अलाउड नहीं है, बाहर जाओ। उन्होंने बोले अरे भैया सन्यासी हूं मैं, 20 साल से मठ में हूं तो अब अलाउ क्यों नहीं है? बोला चिट्ठी आई है बिना बताए आप गंगा यात्रा पे निकल जाओ, आपको मठ से बाहर कर दिया। तो बोला ये होता है हमारे साथ, 20 साल हम सन्यास लिया, एक कुछ बिना बताए थोड़ी सी बात कर दी मठ से बाहर निकाल दिया। तो ये बात सुनी उस मठाधीश ने, बोला हाँ बात तो ठीक है आपकी, आपको देखे मुझे भी डर लग रहा है, मेरे से भी थोड़ी सी गलती होगी मुझे भी बाहर कर देंगे। तो फिर सन्यासी ने बोला ये तो गलत हो गया, कह रहे नहीं घबराओ मत घबराओ मत, होता है गलती मेरी है, चलो जो भी है आप यहीं पे रहो। तो उसके बाद वो वापस आए, उनको मठ में रख लिया गया, लेकिन उनको सन्यास से क्या नाम दिया गया, वानप्रस्थ, और उनका नाम रख दिया बद्रिका आश्रम दास, क्योंकि क्योंकि बाधिक आश्रम से वो नीचे आए थे तो बद्री नारायण दास रख दिया, और उनके जैसे कोई सही ढंग से नियमों का पालन नहीं करता था, मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आता था, तो ऐसे ब्रह्मचारियों को मामा गाछी में भेज दिया जाता था। तो मामा गाछी जगह ऐसी होती थी कि वहां पर बड़े खेत होते थे, खेती करनी पड़ती थी, गायों की देखभाल करनी पड़ती थी, तो वो पूरा जेल था उनके समान, जिनको भी सजा देनी होती थी तो मामा गाछी में भेज देते थे। तो हमारे यहाँ कुछ होना चाहिए ऐसा। और फिर जो सर्दियों का मौसम होता था तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में भेज देते थे, वहां जाके कुछ सेवा करो। तो एक बार एक जो सन्यासी थे वो आए भक्ति सिंह महाराज से बात करने के लिए, तो जो बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला तुम मेरे सेवक हो कि लोगों के एजेंट हो, तुम हो कौन, तुम बात इस ढंग से कर रहे हो कि जैसे कोई तुम्हारे शिष्य हो, उन शिष्यों के बिहा पे मेरे पास आ रहे हो, बात उल्टी होनी चाहिए, तुम्हें जनता के पास जाना चाहिए मेरा प्रतिनिधि बन के, लेकिन तुम मेरे पास आ रहे हो उनका प्रतिनिधि बन के। तो इसमें संदेश बहुत गहरा संदेश है, वो चाहते थे कि जो उनके शिष्यगण हैं, जो प्रचारक हैं, वो कहीं अपने आप को आचार्य बनना समझना शुरू ना कर दें। एक प्रचारक को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो अपने गुरु का प्रतिनिधि है, लेकिन प्रचार में सफलता मिलने के बाद वो सोचता है कि गुरु के पास जाएगा अपने जो जिन लोगों को प्रचार कर रहा है उनका प्रतिनिधि बनकर। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए हमें। तो बाद में क्या हुआ, 20 साल के बाद जब प्रभुपाद शरीर छोड़ने लगे थे, उन्होंने बोला कि तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि मैं कौन हूं, और क्योंकि उनकी चेतना हमेशा इस ढंग की थी, यानी कि अगर शिष्य अगर इस चेतना में रहेगा तो वो कभी अपने गुरु को नहीं समझ पाएगा। मतलब आपका संबंध उनसे नहीं है, आपका संबंध गुरु से है, गुरु के साथ आपका सनातन संबंध है, गुरु का प्रतिनिधि बनकर आपको प्रचार करना है, ना कि उनका प्रतिनिधि बनकर उनकी समस्याओं को लेकर मेरे पास आते रहना। तो ये बहुत सटल बात है जो प्रचारकों को हमको समझना चाहिए। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कोई किसी की निंदा करे। बहुत जैसे कोई व्यक्ति आया, उसने बताया कि उस व्यक्ति ने गलती कर दी है, दूसरे ब्रह्मचारी ने गलती कर दी है, उस भक्त ने गलती कर दी है, तो उन्होंने बोला ओहो उन्होंने गलती कर दी है, वो तो बड़े दुर्भाग्यशाली है। नहीं बोला तुम भी बड़े दुर्भाग्यशाली हो, तुम भी इसमें मिल गए हो, वो भी दुर्भाग्यशाली है, तुम भी दुर्भाग्यशाली हो। फिर चिट्ठी में जवाब दिया और बताया श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। और चैतन्य भागवत में ही बताया गया कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो निश्चित रूप से हम नर्क में जाएंगे, तो किसी की हम निंदा ना करें। और बताया वो नहीं चाहते थे कि कोई भी शिष्य दूसरे शिष्य को करेक्ट करे। हमारी आदत होती है कि हम किसी को भी अपना परामर्श दे देते हैं, किसी गलती को हम ठीक करना शुरू कर देते हैं। बोले चिट्ठी में लिखा कि मैं गुरु हूं, मेरे कई शिष्य हैं, लोग मुझसे परामर्श लेने आते हैं, मुझे किसी को डांटना पड़ता है, किसी को ठीक करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें ये लेने क्या जरूरत है, जिम्मेवारी तुम अपना मस्त रहो, आराम से आनंद में रहो, क्षमा करें तुम आनंद में रहो, तुम्हें किसी को ठीक करने की क्या आवश्यकता है। तो ये हमारी जो आदत होती है, हम दूसरों को करेक्शंस करते हैं, सुझाव देते हैं, इससे हमें बचना चाहिए, और जो क्रिटिसाइज करने का है उससे भी बचना चाहिए। इनके कई ग्रस्त शिष्य भी थे, तो किसी भी ग्रस्त को देखते थे जो काफी समय से मंदिर में मठ में नहीं आ रहा होता था, तो बोलते थे पुनः पुनः चरु थे चरुण नाना, कि दोबारा से उस चक्कर में फंस गए हो, जो चूसे हुए को चूस रहे हो। और बोले कि घर में बैठ के साधना पूरी करने से काम नहीं चलेगा, आपको भगवान की सेवा में, हरि की सेवा में उसी ढंग से जुटना चाहिए जितना कि आप अपने बच्चों की सेवा में जुटते हो। उन्होंने बोला कि जो गृहस्थ हैं उनको मठवासियों के, जो मठ में रहने वाले भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, मठ में रहने वाले भक्तों की सेवा करके ही आपका हरि नाम के जप में रुचि बढ़ेगी, अपने तथाकथित रिश्तेदारों की सेवा करके हरि नाम में रुचि नहीं बढ़ेगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो जो मठ में लोग रहते हैं उनके साथ मिलकर सेवा में जुड़ना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और जितने भी ग्रस्त हैं उनको ये निर्देश दिया कि अगर वो भगवत गीता का पाठ नहीं करते हैं, गीता और भागवत का पाठ नहीं करते हैं और अर्च विग्रह की सेवा नहीं करते हैं तो वो पतित माने जाएंगे। तो इस ढंग से भक्ति सिद्धांत महाराज के अलग अलग आदेश हैं, क्योंकि बहुत से योगदान है। इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जिसको बृहत मतंग बोलते थे, कई शास्त्रों को छापा, और इनके प्रचार के तरीके बिल्कुल अनूठे होते थे उस समय के लिए। जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में म्यूजियम है, डायरमाज हैं। उस समय 1905 में 1914 में डायरमाज बनाते थे, डॉल्स बनाते थे, और 15-15 दिन की एग्जीबिशंस करते थे। कितना सोच देखिए, कितने विजनरी थे। आजकल तो हमारे लिए बातें कॉमन है, उस समय बिल्कुल बिल्कुल बातें कोई सोच में नहीं सकता था। इस ढंग से वो प्रचार करते थे, और ऐसी प्रचार की टेक्निक्स को किसी ने देखा नहीं था। तो एक बार इनके आश्रम में मदन मोहन मालविया जी आए, मदन मोहन मालविया जी अक्सर इनके पास आया करते थे, तो इनसे कुछ प्रश्न पूछने लगे। तो उन्होंने क्या बोला, प्रश्न का उत्तर चाहिए, पुजारियों के पास चले जाओ। तो वो पुजारियों के पास गए, पुजारियों से प्रश्न पूछा, तो पुजारी उसमें क्या कर रहे थे, भगवान के लिए बर्तन धो रहे थे। पहले प्रश्नों का उत्तर चाहिए, पहले बर्तन धो। उन्होंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। फिर जब बर्तन धो के वापस जाने लगे तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा, हाँ जी कोई प्रश्न है, बोला नहीं, बर्तन धो के सारा उत्तर मिल गया। तो बोले हाँ, ये है सेवा उन्मुख ही, सेवा उन्मुख होंगे तो सब कुछ हो जाएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा अगर हम सेवा उन्मुख होंगे। तो सेवा उन्मुख होते नहीं और हम तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों से वो केवल मानसिक अटकलें हैं, मेंटल स्पेकुलेशन है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो सेवा उन्मुख होते ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक बार इनके पास एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा कि ठीक है आपका सिद्धांत तो ये है, ये रामकृष्ण परमहंस क्या बोलते हैं, अरविंदो क्या बोलते हैं, फलाना क्या बोलते हैं। तो क्या है, कहां पे आए हो, कपड़े के कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान में जाओ, मिठाई की दुकान पे ना जाओ। अगर भक्ति चाहिए तो केवल भक्ति की बात यहां करो, और फालतू फालतू बातें मत करो। उसका क्या सिद्धांत है, उसका क्या सिद्धांत है, यहां पे आयो, आपको केवल भक्ति तत्व के बारे में मालूम चलेगा और किसी के विषय में नहीं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत ही, जिसे कहते हैं सिंह गुरु कहलाते थे, और सारी बात कितनी स्पष्ट बोलते थे कि इनके बहुत से शत्रु बन जाते थे। तो एक बार नवदीप के जो जितने भी जात गोसाई थे, उन्होंने सबके मिलने का प्लान बनाया कि इनका मर्डर करा दिया जाए, और उन्होंने पुलिस को 25,000 रुपये रिश्वत भी दे दी। देखिए इतने ज्यादा इनके शत्रु बन गए थे। तो पुलिस ने फिर इनको जाके बता दिया, पुलिस बोलती हम वैसे रिश्वत तो लेते हैं, लेकिन अभी तक किसी को साधु को मारने के लिए रिश्वत नहीं ली, वो हमें जो चेतना हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो उन्होंने जाके साफ साफ बता दिया कि आप थोड़ी अपनी सुरक्षा कीजिए, कि बाकी लोग आपको मारना चाहते हैं। और भी बहुत सी रोमांचक घटनाएं हैं, देखिए हम प्रयास करेंगे अब इनका जो अंत्य लीला थी, जो इनके अंतिम दिन थे, तो अंतिम दिनों में इन्होंने बहुत पहले से बोलना शुरू कर दिया था कि अब मेरा समय आ रहा है, मैं जा रहा हूं। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बताई हुई कविताओं को बोलते थे कि कब मुझे गोवर्धन के तट पर निवास मिलेगा। और जाते 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 इन्होंने बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए, तो इनकी यही चिंता थी कि इनके जाने के बाद इनके शिष्य लोग आपस में कहीं लड़ना शुरू ना कर दें। जैसे कि शिला प्रभुपाद भी जाते जाते बोल गए कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपस में कॉपरेट कीजिए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जी की भी यही चिंता थी। तो जाते जाते उन्होंने बहुत से उपदेश दिए, लेकिन मुख्य उपदेश ये थे, वो कहते थे हमेशा अंतर्मुखी बनो, हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को ठीक करो, दूसरों की गलतियों को मत देखो, कभी भी दूसरों की गलतियों को मत देखो, हमेशा अपने आप को ठीक करो, अमेंड योर सेल्फ। बोल रहे हैं कि इस जो माया के जगत में बहुत सी परेशानियां आएंगे, बहुत से संकट आएंगे, लेकिन हरि भजन करने के हमारे तीन ही मित्र हैं। इस माया के जगत में, संसार में हरि भजन करना आसान नहीं है, तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। तो क्या है, सब्र रखना, विनम्र रहना और दूसरों को आदर देना, यही हरि भजन के मित्र हैं। यानी कि हम ये तीन करेंगे, पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे, विनम्र रहेंगे और दूसरों को आदर देंगे, तो हर परिस्थिति में हम हरि भजन कर सकते हैं। फिर जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कई बारी अलग अलग मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं, कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, उनके सब्र की और उनके मानसिक संतुलन की परीक्षा लेने के लिए। तो सफलता निर्भर करती है हमारे सौभाग्य के ऊपर। जब हम देखते हैं कि दूसरों में बहुत से दोष हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं, दिखाई देता है हमें, हम अच्छे ढंग से भजन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आसपास में दिखाई देता है सब लोग नियमों को तोड़ रहे हैं, सही ढंग से भजन नहीं कर रहे, सदाचार का पालन नहीं कर रहे, गलत बात कर रहे हैं, तो क्या होते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारा उत्साह टूट जाता है। तो बोला ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, अपने अंदर झांक के देखिए, अपने अंदर दोष देखिए और ये सोचिए कि दूसरों की गलतियों से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपके पास अपनी खुद की बहुत गलतियां जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, उन पर ध्यान दीजिए। तो इस ढंग से उन्होंने बहुत सी ऐसी शिक्षाएं दी और सारी शिक्षाओं का उनका मुख्य ये निकलता था सार कि हमें झूठे अहंकार से मुक्त होना चाहिए और हमेशा हर परिस्थितियों में हरि भजन करने का प्रयास करना है। तो 1935 में 1936 1 जनवरी 1936 प्रातः काल में वो नित्य लीला में प्रवेश हुए। इससे पहले 1935 31 दिसंबर को वो लेटे थे और उन्होंने श्रीधर महाराज जी को बोला कि श्री रूप मंजरी पद ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन गाए। तो जो भजन गा रहे थे तो तभी एक और ब्रह्मचारी आए जो कि बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, तो कुंज बिहारी जी उनके शिष्य थे, उन्होंने श्रीधर महाराज को रोक दिया और उनको बोला कि तुम कीर्तन शुरू करो। तो भक्तिनाथ महाराज ने बोला नहीं नहीं, कीर्तन करने के लिए अच्छी आवाज होने की आवश्यकता नहीं है, तो श्रीधर महाराज कीर्तन कर रहे हैं, इनको कीर्तन करने दो। और फिर बाद में एक दूसरे ब्रह्मचारी थे, नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी, उन्होंने जो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने शिक्षाष्टकम के ऊपर कुछ गीत लिखे थे, तो शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक है दुर्देव मिद शमियाज निनानु रागा, जिसमें नाम की महिमा गाई गई है और जिसमें बताया गया कि इतना सब कुछ होने पर भी मेरा नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा। जब वो गीत गाया गया तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने अपने माथे पर हाथ मारा और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं दुर्देव मिद शमियाज निनानु रागा कि मेरे हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाई। ये है विनम्रता। कितना नाम लिया था उन्होंने, 100 करोड़ नाम लिया था उन्होंने, हरि नाम लिया था, लेकिन जाते जाते उनको यही लग रहा था कि मेरी हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई और वो सबसे क्षमा मांग रहे थे, कहते तो मैं बहुत पापी हूं, जो कि भक्तिनाथ ठाकुर जी का भजन है हमारा जीवन सदा पाप रत ना एक पुण्य रलेश, उसी के आधारित उन्होंने बहुत से बोला कि मैं बहुत ही पापी हूँ, मैंने सबको चिंताएं दी हैं, सबको समस्याएं दी हैं, मैंने कभी भी मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई कि अपने भोग के लिए मैं कुछ पाप करूं, मेरे में कोई दया नहीं है, केवल मैं अपने स्वार्थ से भरा रहता था, मैं हमेशा ही झूठ बोलता था और दूसरों को दुख देकर मुझे हमेशा सुख होता था, मेरे हृदय में भौतिक इच्छाएं असीमित हैं, मैं बहुत ही तुच्छ हूं, झूठा अहंकार है, घमंड है, द्वेष से भरा हुआ हूं, सारे सांसारिक बातें मेरे मन में हैं और जो द्वेष और अहंकार मेरे आभूषण है, मैं बहुत ही सुस्त हूँ, नींद से भरा रहता हूँ और पुण्य कार्य करने में कोई रुचि नहीं है और दुष्कर्म करने में बहुत उत्साहित रहता हूँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए मैं कोई भी धोखा देने को तैयार हूँ। इस ढंग से भक्तिसिंह सेठ ठाकुर महाराज अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं, तुम देख सकते हैं कितनी विनम्रता है। वास्तव में जब वो सारी बातें बता रहे हैं तो अपने शिष्यों को अवगत करा रहे हैं कि सारे अनर्थ आपके अंदर हैं, हम सबको अवगत करा रहे हैं कि सारे अनर्थ हम सबके अंदर हैं, अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इन अनर्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भक्तिसिंह महाराज जी के अंदर ये अनर्थ हैं, वो अंतिम समय में हमें भजन गाकर सुनकर बता रहे हैं कि हम सबके अंदर ये अनर्थ हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहिए तो इन अनर्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। श्री भक्ति सिंह महाराज जाते जाते ये बता गए कि जो आखिर की उन्होंने स्टेटमेंट दी वो बता रहे हैं यहाँ पे, प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, कि मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए टू यू ऑल प्रेजेंट एब्सेंट, जो भी हैं आने भविष्य में आने वाले, जो भी उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं है। मैं बोला कि मैं अपने मन में एक बात रखिए कि हम सबका केवल एक ही कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य क्या है कि हम भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा का करें और उसका खूब प्रचार करें, हम सबका केवल एकमात्र धर्म है। तो ये कहा उन्होंने और सुबह 5:30 बजे 1 जनवरी 1936 को वह नित्य लीला में प्रवेश हुए। तो आचार्य गण टीका देते हैं कि जो समय है 5:30 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, ये राधा कृष्ण की जो निशान लीला के लगभग 1 घंटे के बाद का समय है,
जब राधा और कृष्ण गाढ़ आलिंगन में होते हैं तो उसी समय जाके उस लीला में प्रवेश हुए, और यही राधा कृष्ण की युगल मूर्ति चैतन्य महाप्रभु के समान है, तो उसी गूढ़ लीला में ये प्रवेश हुए। तो आज ही का ही वो दिन है, तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज से हमें खूब प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भी हरि नाम के प्रति रुचि हो। इनकी तीव्र इच्छा थी कि हर कोई भक्ति को बहुत गंभीरता से ले। ये हमेशा गंभीर रहते थे, बहुत ही इंटेंस रहते थे, तो उनकी भी इच्छा थी कि हर कोई भक्ति को इसी ढंग से ले। आध्यात्मिक जीवन कोई मजाक का विषय नहीं है, कोई सस्ता नहीं है। और ये जहां भी जाते थे अपने आप को, हालांकि इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी इनको देखता था वो विनम्र हो जाता था, इनसे डरता था। इनकी जो नजर होती थी बहुत पैनी, बहुत ही शार्प, जैसे बिल्कुल आपको अंदर तक देख लेंगे। तो एक बार बर्धमान के राजा थे, उन्होंने सोचा ये कैसे साधु हैं, जब भी मैं इनके पास जाता हूं मुझे दंडवत प्रणाम करना पड़ता है, पूरी दुनिया मेरे आगे झुकती है, मैं इनके आगे झुकता हूं। तो आज मैं जाके इनसे पूछता हूं ये चाहते क्या है मुझसे। तो बड़ी हिम्मत करके उनके पास गए और बोले कि आप मुझसे चाहते क्या है। इतना बोलना ही था कि तुरंत उन्होंने दंडवत कर दिया, उनसे रुका ही नहीं गया। तो इनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, लेकिन जो स्वयं थे ये अंदर से बिल्कुल कोमल थे और बहुत ही विनम्र थे। किसी को भी मिलते थे तो हाथ जोड़कर बोलते थे दासो अस्मि। कोई बाहर का व्यक्ति भी आता था, इनके पांव छूने आता था, तो दूर से उसको पांव छूने नहीं देते थे और पहले उसको प्रणाम कर देते थे और बोलते थे दासो अस्मि। यहां तक कि अपने दीक्षित भक्तों को भी ये पांव नहीं छूने देते थे। और कोई भी इनसे पूछता था कि प्रभुपाद आप आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, अगर कृष्ण की इच्छा हुई। पूर्ण रूप से हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहते थे। तो हमें आज श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भी हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो। ये जाते जाते बोल गए कि हमें कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखना और कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। दोष देखने हैं तो हम अपने अंदर देखें। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कुल मुख्य 108 बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उसमें एक शिक्षा ये है कि हर किसी को अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में हमेशा केंद्रित रहना चाहिए। जीवन के चरम लक्ष्य विषय में हमें हमेशा फोकस रहना चाहिए, और यही भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने अपने जीवन काल में दिखाया। बचपन से ही वो बिल्कुल फोकस थे, उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाया। तो इसी ढंग से हम भी अपने जीवन के लक्ष्य प्रति गंभीर रहें, गंभीरता से इस साधना को करें और अपने अंदर सेवा वृत्ति जागृत कर सकें। और जो चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है वो भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा, श्रील प्रभुपाद की कृपा के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा। तो इन सब प्रार्थनाओं के साथ आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज हम सीधा भक्ति सांसवी ठाकुर महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं। वो हमारे परदादा हुए, तो परदादा हैं, तो परदादा गुरु से हम सीधा, एक हमारा बहुत ही प्रेममय संबंध है। तो हमारे में कितने भी दोष हों अगर हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आज हम कुछ भी संकल्प ले सकते हैं इनके सामने और इनसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं उस संकल्प की पूर्ति के लिए। वास्तव में ये तिरुभाव आविर्भाव दिवस जो आते हैं, ये जो वैष्णव कैलेंडर है, ये वैष्णव कैलेंडर भी इन्होंने ही बनाया। जगन्नाथ दास बाबा जी ने देखा कि ज्योतिष में इतने प्रखंड हैं, तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने उनको बोला आप वैष्णव कैलेंडर बनाइए। तो आजकल जो हमें वैष्णव कैलेंडर प्राप्त होता है जिसमें वैष्णवों का तिरुभाव आविर्भाव दिवस है, उत्सवों का आविर्भाव उत्सव कब कब है, ये सारा इन्होंने ही बनाना शुरू किया। इनसे पहले जब जो हम चार नियमों का पालन करते हैं, इन चार नियमों की स्थापना भी भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने की। तो जब अब संप्रदाय आ गए थे सब, तो कोई नियमों का पालन नहीं होता था, तो ये चार नियम हैं जो हमारे मुख्य, वो भी इन्होंने स्थापना की। तो इनका योगदान बहुत ही अमूल्य योगदान है। तो हम इनसे प्रार्थना करें और हमारे अंदर जो कुछ कमियां हैं उनको हम पूरा ओवरकम करने के लिए कुछ संकल्प ले सकते हैं, तो वो संकल्प की पूरी करने की शक्ति हमें भक्ति सिद्धांत महाराज अवश्य देंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद त्रिवा तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद।